आज का प्रातः क्लास है 23/4/63 का। नाटकों में स्त्री पुरुष के लव की बात आती है। अब लव तो स्त्री का पति के साथ है ही, इस बात पर बहुत गीत बनाते हैं। और यहां तो बात ही बिल्कुल न्यारी है, जिस न्यारी बात को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि किसके साथ लव है, जब हम कहा जाता है तो ये शरीर याद पड़ता है। जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, काय के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कहा जाता है। तो हम आत्मा फिर कहां जाती है, कहा जाता है मेरा शरीर, अब मेरा मेरा कहा जाता है तो शरीर किसका है, मुझे आत्मा का है। तो मुझे इस समय बाप को याद करना है, शरीर से मोह छूट जाता है, इसको ही कहा जाता है देही अभिमानी। फिर देही अभिमानी को इन आर्गन्स द्वारा देही का जो बाप है उनकी हिम्मत पर चलना है। अर्थात श्रीमत पर चलना है। तो अब श्रीमत किसकी है, क्योंकि श्रेष्ठ तो है निराकार परमपिता परमात्मा, परंतु आत्मा तो सभी क्या है, निराकार ही तो है। तो जो भी निराकार आत्माएं हैं उनमें कैसे पता चले, कि कौन सी आत्मा की श्रीमत है। कहते हैं परमपिता परमात्मा, तो इस बात का ही दुनिया में रोला है, क्योंकि उन्होंने श्रीमत रख दी है कृष्ण की। उन्होंने माने किन्होंने, भक्तों ने। अब कृष्ण तो श्रेष्ठ हो न सके, क्यों नहीं श्रेष्ठ हो सकता, वो तो निराकार है ही नहीं, वो तो सृष्टि का साकार पहला पत्ता है, निराकार तो बीज को कहा जाता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो सभी गॉडफादर को ही कहते हैं, कृष्ण बच्चे को कैसे कहेंगे? कृष्ण को नहीं कहेंगे। गॉडफादर इन कार्पोरियल को ही कहा जाएगा। कृष्ण तो कार्पोरियल है, और है कहां की बात? कृष्ण कार्पोरियल है, निराकार नहीं है, तो इस बात का भी फाउंडेशन कहां से पड़ता है? संगम में फाउंडेशन पड़ता है। कैसे? कृष्ण का कोई भी, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का कोई भी ऐसा फोटो नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। तो अब तुम बच्चे जान गए हो कि हमको दो बाप आकर के मिले हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य आत्माओं का बाप। आत्माओं का बाप है तो निराकार, और मनुष्य आत्मा है,
वो भी निराकार।
मनुष्य आत्मा है सबको निराकार कहेंगे क्या?
बनेगा ना,
वो तो नंबर वार बनेंगे ना। तो नंबर वार की लिस्ट में आने वालों को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे और फिर उनकी श्रीमत कहेंगे? उनको तो श्रीमत नहीं कहा सकते। तो जो भी निराकारी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उनमें बीज कौन? जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी बीज ही है। बीज को बाप कहा जाता है। तो एक है आत्माओं का बेहद का बाप और एक है मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। वो दोनों अब आकर के मिले हैं काहे में? एक ही शरीर में दोनों आकर के मिले हैं। वो जो श्रीमत देते हैं उस मत पर पूरा चलना है। तो अब श्रीमत हो जाती है एक की या दो की?
एक।
कैसे?
एक
ही शरीर में तो दो है। क्योंकि बाप दादा इकट्ठे हैं, दोनों में बाप कौन है और दादा कौन है?
बक्षु बक्षु।
आत्मिक स्थिति से कहेंगे तो आत्माओं का बाप है शिव बाप, उसको परम पिता कहते हैं क्योंकि उसका कोई पिता
नहीं
है ही नहीं। वो मनुष्य आत्माओं के पिता का भी पिता है। तो जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें जो बड़ा है उसको दादा कहा जाता है। बाप दादा दोनों इकट्ठे हुए ना, परंतु बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि ये श्रीमत कौन देते हैं।
आत्माओं का बाप
पता पड़ता है
हमको, हमेशा समझना है ऐसे हुआ भगवान का,
कभी गड़बड़ तो नहीं होता,
नहीं होना है।
बच्चे समझते हैं कि इसमें सदैव बाप तो नहीं बैठा होगा, सदैव कोई सवारी करता है क्या? बैल पर सवारी सदैव तो नहीं होगी है? इसको बैल कह दिया है? रमली आत्मा को बैल कह दिया है? बैल दे अभिमानी सांडे को कहा जाता है। तो जो भी मनुष्य मात्र हैं कि आत्माएं हैं, वो दे अभिमानी बनती नहीं है क्या? बनती तो है। तो जो भी दे अभिमानी आत्माएं बनती हैं, उनमें मुख्य हैं दो, एक है बाप मनुष्य सृष्टि का और दूसरा है उसका पहला
दादा
बच्चा श्री कृष्ण, जो अंतिम जन्म में आकर के देह अभिमानी बैल के रूप में दिखाया गया है। जहां जहां शिवलिंग बना देंगे तो लिंग है किसी और की यादगार, उसमें बिंदु है किसी और आत्मा की यादगार। किसकी यादगार? बिंदु है शिव की यादगार, लिंग है मनुष्य सृष्टि के बाप के साकार स्वरूप की यादगार, और जो बैल दिखाते हैं वो किसकी यादगार है? हाँ, वो उसकी यादगार है कि परमपिता परमात्मा बाप आते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, परंतु वो अपने साकारी स्टेज को जल्दी छोड़ नहीं पाता। तो बाप बैल में आवेंगे या मनुष्य में आवेंगे? जानवर में आवेंगे क्या? बाप आवे और कोई पहचान न पावे तो उसे जानवर बुद्धि कहें या मानवीय बुद्धि कहें? जानवर भी तो अपने बाप को पहचान लेते हैं। तो फिर बच्चे समझते हैं कि जरूर ये ब्रह्मा की मत होगी। ब्रह्मा भी एक है ब्रह्मा और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप कहते हैं फिर भी ब्रह्मा की मत गाई हुई है, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो और चाहे ब्रह्मा हो। हां, कष्ट की मत नहीं गाई हुई है, न शिव की मत गाई हुई है। क्यों? शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी कैसे मत देगी? मत देने के लिए मुख चाहिए। तो ब्रह्मा की मत गाई हुई है। ब्रह्मा का नाम बाला है, कहां? शास्त्र में ब्रह्म का नाम बाला किस रूप में? शास्त्रों की कौन सी बात, कौन सी कहानी आई जिसमें नाम बाला है? प्रजापिता ब्रह्म, प्रजापति ब्रह्म, दक्ष प्रजापति। तो बच्चों को मत मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता में जो श्रीमद् है ये भी पता निकालना पड़े कि गीता में किसकी मत है। ब्रह्मा की मत है या शिव की मत है? अभी ब्रह्मा तो है शिव का बच्चा, कब की बात बताई? अभी माने 63 में ब्रह्मा तो है शिव का बच्चा, शिव का बच्चा, शिव तो बिंदी का नाम है, बिंदी का बच्चा होता है क्या है? बच्चा तो रचना हो गई, बाप रचयिता हो गया, और आत्मा तो अनादि है कि रचयिता रचना होती है। तो ब्रह्मा तो है शिव का बच्चा, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों ही उस शिव के बच्चे हैं। उस कह के दूर क्यों कर दिया?
भविष्य में बात है,
भविष्य की बात है, पास्ट की बात नहीं है। पास्ट में सन 36 में शिव अकेला आया क्या?
तीन मूर्ति शिव के साथ,
तीन मूर्तियों के साथ ही तो शिव आया। तो सिर्फ ब्रह्मा ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों उस शिव के बच्चे हैं, चाहे पास्ट में कहें और चाहे फ्यूचर में जो पार्ट होने वाला है उसके लिए कहें। ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं, त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, शास्त्रों में गायन है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। तो कृष्ण को आदिदेव नहीं कहेंगे क्या?
आदिदेव
क्यों? सृष्टि का पहला पत्ता है तो पहला देवता नहीं बनता है?
नहीं बनता,
पहला पत्ता तो है, परंतु जो भी देवात्माएं हैं उनमें जो पहला होगा, अव्वल नंबर होगा, वो बड़ा होगा या बाद वाले पत्ते बड़े होंगे? अव्वल नंबर को ही बड़ा कहेंगे। उन्होंने तो कथा बना दी, अल्लाह अव्वल दिन, अल्लाह आते हैं तो अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं। तो अल्लाह किस में आवेंगे? कृष्ण में आवेंगे क्या? कृष्ण को तो आदिदेव नहीं कहेंगे। शास्त्रों में किसको आदिदेव कहा है? कृष्ण को कहा है कि शंकर की स्थिति में कहा है, शंकर के लिए कहा है। अगर कृष्ण को कहें कि आदिदेव है तो फिर आदिदेव कहने से राधे का नाम तो आता नहीं है। आदि देवी के रूप में कृष्ण को आदिदेव कहें तो राधे वो भी आदिदेवी हुई या नहीं हुई? लेकिन लेकिन शास्त्र में गायन है कि राधे आदिदेवी है नहीं। तो ये पॉइंट्स समझाई हुई हैं, परंतु बच्चों को विस्मृति हो जाती है, इसलिए फिर से समझाया जाता है। बाबा रिफ्रेश कराते हैं, बाबा जानते हैं कि बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो बताते हैं कि जगदम्बा और जगत पिता दोनों ही नामी ग्रामी हैं। जगत पिता के साथ जगतम पितरम, तो जगत का पिता हुआ ना, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, ऐसे कहा जाता है। तो जगदम्बा और जगत पिता दोनों बहुत नामी ग्रामी हैं शास्त्रों में। प्रजापिता उनका नाम है जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। अब ब्रह्मा जब कहा जाता है तो बुद्धि चली जाती है सूक्ष्म बतन में, ब्रह्मा को कहां का वासी समझते हैं? सूक्ष्म बतन वासी समझते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म बतन में से श्रीमत देंगे क्या? श्रीमत किसको कहें? वो सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा तो है आकारी, जो आकारी है उसमें आवाज तो निकल नहीं सकती, वो तो सबटिल बर्ड हो गई। और कृष्ण है साकारी, तो मनुष्य कहेंगे आकारी ब्रह्मा कैसे मत देंगे? क्या जवाब आएगा? जो साकारी ब्रह्म है वही आकारी ब्रह्म बन जाता है, तो मत कैसे देंगे? है आकारी में से तो आवाज निकल नहीं सकती, वो तो टाकी हो न सके, टाकी होने के लिए तो साकार मुख चाहिए, तो आकारी ब्रह्मा कैसे मत देंगे? जरूर कोई साकार में प्रवेश करना पड़े, क्योंकि मत तो साकार ही देंगे ना। इसलिए कृष्ण ही होना चाहिए, और वो है भी स्वर्ग का प्रिंस। और ब्रह्मा तो है सूक्ष्म बतन में, भल ब्रह्मा का चित्र भी बनाते हैं, तो चित्र कहां से बनते हैं? सूक्ष्म बतन के बनते हैं या साकारी दुनिया के बनते हैं? चित्र तो चरित्र की यादगार है, और चरित्र जो खेले जाते हैं वो तो साकारी दुनिया में खेले जाते हैं। चित्र ब्रह्मा का बनाते हैं क्योंकि सूक्ष्म बतन का तो कुछ बना ही नहीं सकते, इसलिए स्थूल में ब्रह्मा का चित्र बनाए रखा है। तो फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म बतन वासी है, तो भला ब्रह्मा की मत कैसे मिले? तो जरूर उनको स्थूल बतन में आना पड़े। और तो युक्ति नहीं है जो स्थूल में आवे। ये तो कोई कह न सके कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा यहां आ सकता है। उनको भी फिर जन्म देने वाला कोई चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा की भी मां चाहिए। क्या कहा?
मां चाहिए।
प्रजापिता है मनुष्य सृष्टि का बीज और उसकी भी मां चाहिए। तो जो भी मनुष्य हैं उनको ब्रह्मा जरूर चाहिए। तो फिर कौन हुआ वो ब्रह्मा जो प्रजापिता की भी अम्मा हो? नहीं तो अम्मा के बगैर पैदा कैसे हो? कृष्ण के मां बाप भी तो मशहूर हैं। इसलिए ब्रह्मा को कहा है। ये ब्रह्मा है साधारण मनुष्य, जिसमें मैं आता हूं। कौन सा ब्रह्मा? उत्या 63 में था। फिर ये मुरली कब की है? यह ब्रह्मा है साधारण मनुष्य जिसमें मैं आता हूँ।
भविष्य भी आदि में भी।
हाँ, मैंने उस ब्रह्मा की बात बताई जिसमें परमपिता परमात्मा पिता के रूप में आते हैं, श्रीमत देते हैं। परंतु इस बात को दुनिया नहीं जानती है कि मैं किस ब्रह्मा में आकर के श्रीमते देता हूं। तो बाबा आकर के इस गुचवण को समझाते हैं, बंदर बिखाते हैं ना। कोई कहते हैं इनको ब्रह्मा किसने बनाया? ब्रह्मा किसकी रचना है? ब्रह्मा का बाप कौन? कोई तो अथॉरिटी होगा ना। ऐसे तो बहुतों के नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो इस बात पर समझाते हैं ये बुद्धि में याद पड़ना चाहिए कि ये बात भगवान ही समझा सकते हैं, और तो कोई समझा ही नहीं सकता। ये ब्रह्मा है भगवान का बच्चा। कब की बात है?
63
जरूरी यज्ञ के आज की बात है कि जगदम्बा है प्रजापिता की माता। क्योंकि पहला ब्राह्मण भी चाहिए, और ब्राह्मण किसका बच्चा होता है?
ब्रह्मा
का बच्चा होता है। तो जो पहला ब्राह्मण है उसको जन्म देने वाली माता है जगदम्बा ब्रह्मा, और उसका बच्चा है। दोनों का फिर बच्चा कौन? प्रजापिता का बच्चा कौन?
ब्रह्मा।
तो इस बात पर समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं कि ये पता कैसे हो, मैं कैसे इनको जन्म देता हूं। इनको माने किसको? एक की बात है या दो की?
दो।
कौन कौन दो? इन को माने ब्रह्मा को और प्रजापिता ब्रह्मा को कैसे जन्म देता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म कौन देते हैं? ये कोई भी नहीं जानते हैं। कृष्ण का जन्म तो मां बाप से दिखाते हैं, फिर ब्रह्मा का जन्म किससे हुआ? तेईस सात तिरसठ की वाणी का दूसरा पेज। ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना कैसे होती है? अब रचना सूक्ष्म वतन में होती है या साकार वतन में होती है? रचना और रचयिता का संबंध तो साकार वतन का है। परंतु हर चीज पहले सूक्ष्म में तैयार होती है कि पहले स्थूल में तैयार होती है? पहले तो सूक्ष्म में हर चीज तैयार होती है, तो सूक्ष्म को सूक्ष्म वतन कह दिया है। ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं। सूक्ष्म का तो मां बाप भी सूक्ष्म ही होगा, दूसरा तो कोई है नहीं। जो ये सुना सके, कितनी गुह्य बातें हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो जरूर कोई होगा ना। अब रचयिता निराकार होगा या साकार होगा?
निराकार।
रचयिता
सूक्ष्म ज्योतिबिंदु।
हाँ, तो ज्योतिबिंदु निराकार से सूक्ष्म ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना, ये संकल्पों की सृष्टि हुई। फिर स्थूल में भी चाहिए ना। एक ही परमपिता परमात्मा है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कर्म करवाते हैं, तो जरूर रचना भी उसने ही रची होगी। बाप तो जरूर चाहिए, वो बाप ही आकर के समझावेंगे ना। तो वो आकर के इन द्वारा समझाते हैं। किन द्वारा?
प्रजापिता
और ब्रह्मा द्वारा। पहले पहले किसके द्वारा? क्यों? पहले ब्रह्मा में आए या प्रजापिता में आए? ब्रह्मा में आए। कैसे? पहले ब्रह्मा आता है कि प्रजापिता आता है? ब्रह्मा आता है पहले।
ब्रह्मा से प्रजापिता आता
है। ब्रह्मा से प्रजापिता आता है। ये कि आदमी में पहले ब्रह्मा आया? ब्रह्मा ने समझाया?
नहीं, सुनाया
समझाया। तो यहाँ समझाने की बात हो रही है
तो
या सुनाने की बात हुई?
प्रजापिता।
तो वो आकर के इन द्वारा समझाते हैं। किन द्वारा?
प्रजापिता ब्रह्मा।
हाँ, आते हैं समझाते। समझाने से पहले सुनाया जाता है कि पहले समझाया जाता है?
सुनाया जाता है।
तो किस ब्रह्मा के द्वारा सुनाया और किस ब्रह्मा के द्वारा समझाया?
जगदम्बा के द्वारा सुनाया।
जगदम्बा के द्वारा आदि में आदि ब्रह्मा के द्वारा सुनाया और
समझाया प्रजापिता।
बाप ने बाप के रूप में प्रजापिता के द्वारा समझाया। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना विनाश पालना कराने वाला जरूर उनसे ऊंच होगा। किससे? जिन द्वारा आकर समझाते हैं। जगत पिता जगदम्बा के मुकाबले जरूर स्थापना पालना विनाश करने वाला ऊंच होगा, परंतु कृष्ण तो हो न सके। क्यों?
कृष्ण तो क्या,
कृष्ण तो हुआ मनुष्य है, और मनुष्य जो होता है वो किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करता है, मनन चिंतन करता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? भगवान तो असोचता है, तो कृष्ण तो मनुष्य हुआ, और वो ब्रह्मा विष्णु शंकर हुए देवताएं। भगवान तो मनुष्य को क्या बनाने वाला है? देवता बनाने वाला है। तो उन देवताओं से भी ऊपर में जाओ, कौन है?
शिव है।
तो ऊपर में है मूल वतन, स्थूल सूक्ष्म और मूल वतन गाया जाता है, और मूल परम धाम को कहा जाता है मूल वतन, और वो है सूक्ष्म वतन। मूल वतन में कौन रहता है? मूल वतन में तो जरूर मूल ही रहता होगा। ये जो शरीर धारण किए हैं भिन्न भिन्न, उनका मूल कारण कौन है? आत्मा। तो जो मूल कारण है वो कहां रहता है? मूल वतन में। तो मूल वतन में रहती है आत्माएं, और सूक्ष्म वतन में कौन रहता है?
ब्रह्मा
विष्णु शंकर, जो सूक्ष्म वतन वासी है। तो ये बातें बड़ी सिंपल हैं, परंतु तुम्हारे लिए तो सिंपल है, और दुनिया के लिए तो सिंपल नहीं है। तो अपन को क्या बात सिद्ध करनी है? अपन को ये सिद्ध करना है कि श्रीमत किसकी है?
शिव बाबा।
श्रीमत शिव ज्योति बिंदु आत्मा की है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर की है, या साकार में शिव जब प्रत्यक्ष होते हैं बाप के रूप में, उनकी श्रीमत है? कृष्ण तो बच्चा है, अर्थात तो बच्चा बुद्धि है, बच्चा तो मनन चिंतन मंथन कर नहीं सकता, तो कृष्ण को तो हम कह नहीं सकते। उन कृष्ण से तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं ही ऊंचे हैं। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा हुई है, शास्त्रों में ज्ञान किस बात का है? मनुष्य सृष्टि किससे पैदा हुई? ब्रह्मा द्वारा सृष्टि पैदा हुई। अब कृष्ण द्वारा थोड़ी कहेंगे, ब्रह्मा ही ऊंच गाया हुआ है, कृष्ण तो मनुष्य हो गया, ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी, परम पिता परमात्मा है मूल वतनवासी, उनको याद गॉडफादर कह करके याद करते हैं। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे?
गॉडफादर।
गॉडफादर। तो परमपिता अक्षर जरूर आता है। लौकिक बाप को अथवा डाडे को परमपिता नहीं कहा जाता। कहा जाता है क्या है? क्यों नहीं कहा जाता? लौकिक बाप को या बाप के बाप डाडे को परमपिता क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि उनका भी तो कोई पिता हुआ था ना, फिर उनका भी कोई पिता हुआ, फिर उनका भी कोई पता हुआ, तो उन देहधारियों को तो परमपिता नहीं कहा जाता। ये परमपिता टाइटल तो बहुत ऊंचा है, जिससे ऊंचा कोई होता ही नहीं। इसलिए आत्मा कहती है, हे परमपिता परमात्मा, हमको इस दुख से छुड़ाओ। साकार बाप अथवा दादा से थोड़ी कहते हैं, कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, हमारी ये आस पूरी करो। तो अभी आस पूरी करने वाला ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा। वो लोग फिर आशा जाकर सुनाते हैं रचना को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को अथवा कृष्ण आदि आदि को कहेंगे कि हमको पुत्र चाहिए, धन चाहिए। नारायण के आगे जाके कहेंगे अब ये ब्रह्मा तो कोई मांगता नहीं, कृष्ण के पास जाकर ऐसे भी नहीं कहेंगे कि हमको राजाओं का राजा बनाओ, मना कृष्ण ने थोड़ा ही राजयोग सिखाया
नहीं।
जो राजाओं का राजा बना बे, ये तो गीता में ही भगवान ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कृष्ण तो स्वयं प्रिंस था, प्रिंस को फिर राजाई किसने दी होगी? जरूर उसके बाप ने राजाई दी होगी, फिर बाप के पास राजाई कहां से आई? तो देखो ये सभी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते तो हैं, परंतु ऐसे नहीं कहते हैं कि आपने तो राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाया था। हाँ, गीता में ये लिखा हुआ है मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। शास्त्रों में गायन है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात कृष्ण और नारायण दोनों 16 कला संपूर्ण, ये तो देवता हैं। तो वो बनाने वाले हैं या खुद बनने वाले हैं? है? कृष्ण या नारायण जो बनते हैं वो बनने वाले हैं या दूसरों को बनाने वाले हैं? वो तो बनने वाले देवता हैं, 16 कला संपूर्ण है, कलाओं में उनको बांधा हुआ है। और भगवान को कलाओं में बांधा जाता है क्या? भगवान को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, सूर्य कलाओं में बांधा जाता है क्या? वो तो कलातीत है। तो अभी हमको कितना वंडर लगता है कि ये कृष्ण को गीता का भगवान कैसे बना दिया। क्योंकि कृष्ण ही तो श्री नारायण बनते हैं, तो बनाने वाला कोई दूसरा चाहिए या स्वयं कृष्ण ही अपने को बनाता है नारायण? हमने पूजा तो बहुत की है, परंतु गीता में तो है ही कृष्ण भगवान वाच। और भगवान तो राजयोग सिखाने आया। भगवान ने कहा मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु ऐसे कब कोई नहीं कहते हैं कि हमको राजाओं का राजा बनाओ। गीता पढ़ते हैं, गीता सुनाते हैं, तो कोई वहां सभा में कहते हैं, सुनने वाले पढ़ने वाले ये कहते हैं कि हमको भी राजाओं का राजा बनाओ?
कोई जानते ही नहीं,
ऐसे कब कोई नहीं कहते हैं। हमने तो बहुत भक्ति की है, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं जो कृष्ण को कहें आप जब आए थे तो आपने राजाओं का राजा बनाया था। कृष्ण ने बनाया था क्या किसी को? अभी तो वो नहीं है ना। कौन? कृष्ण। कृष्ण भगवान होकर गए हैं ऐसे कहते हैं, परंतु कृष्ण को द्वापर में ले जाने से उनको श्री नारायण समझ नहीं सकते। द्वापर में 16 कला संपूर्ण होते हैं या सत्युगुण 16 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन कृष्ण को कहां ठोक दिया? कौन से युग में ले गए? द्वापर में ले गए। तो द्वापर में तो ज्यादा से ज्यादा 8 कलाएं रह जाती है। वहां तो नारायण नहीं समझ सकते। अगर कृष्ण ही भगवान होता तो फिर उनसे क्यों नहीं ये कहते कि हमको राजाओं का राजा बनाओ? आपने ही हमको राजयोग सिखाया था। सुनने वाले इतना गीता ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते भी हैं, लेकिन ये तो कोई नहीं कहता कि हमको राजाओं का राजा बनाओ। जो चीज उसने दी वो ही फिर उनसे मांगनी चाहिए ना। अगर कृष्ण ने राजाओं का राजा बनाया तो फिर कितने जन्मों से गीता सुनते चले आए, कोई ने ये इच्छा जाहिर की कि हे गीता के भगवान कृष्ण हमको भी राजाओं का राजा बनाओ। मनुष्य से देवता बनने की तरकीब बताओ। न सुनाने वालों ने तरकीब बताई, न सुनने वालों ने तरकीब जानी, और न कोई अभी तक। हजारों वर्ष बीत गए गीता सुनते सुनते, कोई भी राजाओं का राजा बना नहीं, राजा ही नहीं बना। वो तो सिर्फ मांगते हैं पुत्र दियो, धन दियो, कृष्ण के या नारायण के आगे जाके मांगते हैं ना। तो उनके आगे, कृष्ण के आगे जाकर के स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मांगते थे? अगर वो मनुष्य से देवता स्वर्ग का बनाते हैं तो अभी तो देखो कितना वंडर लगता है। कृष्ण से मांग ही कैसे सके, क्योंकि वो तो भगवान है ही नहीं। अच्छा, वो कृष्ण कब आया था ये भी पता कैसे पड़े? क्या द्वापर में आया था? द्वापर में तो 8 कलाएं भी नहीं रहती। कहते हैं द्वापर के अंत में कृष्ण आया। तो पता नहीं पड़ता है तो फिर कह देते हैं प्रेरणा, प्रेरणा अक्षर कह देते हैं। भगवान की प्रेरणा से हमारी मनोकामना पूरी हुई तो फिर भला कोई क्यों नहीं प्रेरणा से राजाओं का राजा बन जाते, भगवान क्यों नहीं प्रेरणा से राजाओं का राजा बना देते, गीता सुनने सुनाने की दरकार ही नहीं। अगर प्रेरणा से ही कराते हैं तो राजाओं का राजा बनाते होंगे। अच्छा शिव बाबा है तो उनसे क्यों नहीं मांगते हो?
ज्ञान दे रहे
हम आपके पास पहुंचे, ऐसे तो कोई कहते नहीं है, न शिव को कहते न कृष्ण को कहते। वो भक्त तो समझते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है, तो दो बातें हैं, कृष्ण का नाम दे करके शिव का नाम गुम कर दिया है। अब कृष्ण का नाम तो है नहीं, उनसे कुछ भी नहीं मिल सकता, वो राजयोग सिखा ही नहीं सकता। कृष्ण बच्चा राज की बातें क्या जाने, तो राजाओं का राजा कैसे बनावेंगे? भक्ति मार्ग में रोले बहुत हैं, तो अभी बाप श्रीमत देते हैं, कहते तुम शास्त्र पढ़े हुए हो, परंतु अभी जबकि भगवान वाच बच्चों प्रति है तो भगवान तो बाप ठहरा, और वो बाप हो गया स्वर्ग की स्थापना करने वाला, क्योंकि नरक को नारायण बनाएगा तो नारायण को कौन सी दुनिया चाहिए, नरक की दुनिया चाहिए या स्वर्ग की दुनिया चाहिए? तो जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो हम अगर बाप को और स्वर्ग को याद करें तो स्वर्ग की राजाई हमको क्यों नहीं मिलेगी? ट्रेसठ की वाणी का तीसरा पेज। लौकिक संबंध में भी तो बाप से ही वर्षा मिलता है, परंतु लौकिक बाप की कोई पूजा बैठ नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं है? लौकिक बाप की पूजा क्यों नहीं करते?
एक जन्म
है,
एक सिर्फ एक जन्म के लिए,
एक जन्म के लिए करें, करते हैं एक जन्म के लिए पूजा?
नहीं,
पूजा बैठ नहीं करते हैं, क्योंकि पूजा का आधार है प्योरिटी, और लौकिक बाप ने प्योरिटी से जन्म दिया या इम्प्योरिटी से जन्म दिया? और तो इम्प्योरिटी से जन्म देते हैं। हम भी उस लौकिक बाप की पूजा नहीं करते थे, उनसे तो डायरेक्ट वर्षा मिलता है, किनसे? शिव बाबा से। वो जब डायरेक्ट आते हैं तो वर्षा देते हैं, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सर्वम भज। क्या कहते हैं? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्मों को त्याग दो, ये सब देह के धर्म हैं,
आत्मा को कोई धर्म नहीं,
ये आत्मा के धर्म नहीं है, मैं स्वधर्म में आकर के तुमको टिकाता हूं, मैं तुम्हें आते ही बताता हूं तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा ज्योति बिंदु है, उसे ज्योति बिंदु की याद में टिको, यही तुम्हारा स्वधर्म है। तो हम तो जानते हैं कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, और तो दुनिया में कोई भी स्वर्ग की स्थापना कर ही नहीं सकता, चाहे कोई भी पावरफुल धर्म पिता इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट क्यों न हो, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई भी सदैव स्वस्थिति में नहीं रहता है सिवाय परम पिता परमात्मा के। इसलिए वो ही आकर के हमको स्वस्थिति का ज्ञान देते हैं, वो ही सब की स्थापना करने वाला है। बाबा कितनी सहज बात कहते हैं, कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। क्या सिर्फ माने?
माँ
में एकम याद करो। माँ में एकम का क्या मतलब? दूजम को याद ना करो। एक बिंदी को कोई याद करता है? जब कहते हैं माँ में एकम याद करो, तो एक या दो या तीन का अंतर कैसे पता चलेगा? बिंदु बिंदु को याद करने से पता चलेगा, ये बिंदु शरीर में प्रवेश करे तब वो प्योरिटी का पता चले। फिर इतने शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करने की क्या दरकार है? जबकि कहते हैं मुझे एक को ही याद करो। क्या ये शास्त्र आदि जो बने हैं वो पहले बने या भगवान ने आकर के पहले ज्ञान दिया?
भगवान ने
आकर के जो पहले ज्ञान दिया संगम युग में, बाद में फिर उसके शास्त्र बने। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, पहले धर्म स्थापना की बातें बताते हैं, धर्म की धारणाएं सुनाते हैं, फिर बाद में उनके बाइबल कुरान आदि शास्त्र बनते हैं। तो बाप कहते हैं ये बाइबल कुरान आदि शास्त्र जैसे रचना है, वैसे ये तुम्हारे शास्त्र भी ये रचना है। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है, कैसे मिलता है? रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। तो ये शास्त्रों से जो यज्ञ तप जप आदि बातें निकली हैं, इनसे मेरे को कोई तुमको कोई मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, न मेरे से आके कोई मिल सकते हैं और न वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे वर्षा प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, मामेकम याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने। गाया भी जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे, हमको उस बाप ने अडॉप्ट किया है, उनको याद करने से बरोबर हम राजाओं का राजा बनकर बनेंगे, सखा भी वो बनेंगे। क्या कहा? भगवान के सखा भी कौन बनेंगे? कोई बनेंगे या नहीं बनेंगे? सखा माने
फ्रेंड्स,
साथी, एक जन्म के साथी या जन्म जन्मांतर के साथी? एक जन्म के साथी भगवान के बनेंगे, बाद बाबा की जन्म में भगवान के साथी नहीं बनेंगे।
जन्म जन्मांतर
के सखा का संबंध निभाने वाले। तो सखा भी वो बनेंगे, साथी अर्थात फ्रेंड्स भी वो बनेंगे। कौन बनेंगे बताओ?
जो साथ देते
हत कौन है? कौन देते हैं साथ? कितने देते हैं साथ? कोई संख्या वंख्या है कि नहीं? 8 हैं, जो आदि से लेकर के सृष्टि के कल्प आदि से लेकर के कल्पांत तक साथ निभाते हैं, सखा बनते हैं, और वो बनते हैं तब जब पूरा इम्तहान पास करते हैं। क्या? पूरा इम्तहान पास करते हैं तो फिर सखा बनते हैं। कहते भी है खुदा दोस्त, गाया हुआ है खुदा दोस्त, तो वो बाप है स्वर्ग का मालिक। ये राजयोग है ही राजाओं का राजा बनाने वाला। अच्छा, ओम शांति।